चिल के साथ आपको टेम्परेचर -45 जो है वो फील होएगा। इसको कहते हैं असल सर्दी। वो सर्दी की है जो पाकिस्तान पेंदी इस्लामाबाद -1।
आप लोग कई दिनों से कंप्लेन कर रहे थे ना मुझसे भी कि भाई आप नवंबर का
महीना, मैंने नहीं की थी, मैं तो शुक्र ही कर रही थी, अरबों बजी ने की थी, अरबों बजी ने कंप्लेन की थी,
जनवरी का महीना आ गया और ये सब, इसलिए मैंने कहा कि नहीं नहीं अब आपको चाहिए बर्फ,
अरबों बजी कंप्लेन कर
चाहिए बर्फ।
हाँ
आ लो पढ़ो। अब जाते हैं एक छोटे से ब्रेक की जाने पर, उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे सारी की सारी रिपोर्ट एंड न्यूज इस ब्रेक के बाद।
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
हाँ जी, तो हम अपनी खबरें जारी रखते हैं। तो बोइंग जो है जी, बोइंग तैयारे वाले, उनकी बदबख्तियां जो हैं बहुत बढ़ गई हैं। उसकी वजह यह हुई है कि एक बड़ा ही डिजास्ट्रस किस्म का इवेंट जो है वो हुआ है अलास्का एयरलाइन फ्लाइट 1284 के साथ, कि ऐसा हुआ कि ये, हालांकि इसमें बहुत ही कम लोग थे एंड थैंक गॉड फॉर दैट, तो लोग बहुत सारे जाने भी जाया होने से बच गई और 6 इसमें क्रू मेंबर्स भी थे, वरना तो इसके अंदर 171 पैसेंजर्स जो हैं वो होते हैं। हुआ ये है कि ये जा रहा था जनाब जो है ऑन्टेरियो से, सॉरी पोर्टलैंड में ये वापस आया, पोर्टलैंड से ही चल रहा था, पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया जा रहा था, लेकिन ये वापस आ गया। उसकी वजह ये है कि इसका जो एक हेड रेस्ट है वो रिप करके जो है वो कैबिन से बाहर गया, फिर कॉकपिट का डोर जो था वो जो है उड़ता हुआ वो बाहर गया, इतनी जोर से ये बाहर गया कि जो ऑफिसर का हेडसेट था वो भी इसमें फिर उड़ के बाहर गया। तो ये जो तैयारा था ये बोइंग 737 मैक्स था, जिसको के बोइंग वाले बहुत ही ज्यादा अरसे से इसकी में करेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पता ही है कि बहुत ही दो एक डिजास्ट्रस किस्म के जो हैं वो हुए थे, एक्सीडेंट हुए थे, बड़े फेटल क्रैशेस हुए थे, और उसके बाद जो है ये इसको लाने की कोशिश कर रहे थे इन लाइन विद द यू नो ऑल द एविएशन कंप्लायंस एंड एवरीथिंग। और ये जो तैयारा था अमरीका में अलास्का वालों को, ये जो इनकी ये जो अलास्का एयरलाइन थी, इसको भी 3 महीने पहले ही उन्होंने ये डिलीवर किया था, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद जो है आज अमेरिका के अंदर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने ये 9737 मैक्स प्लेन्स जो लिए थे वो उन्होंने ग्राउंड कर दिए हैं, और इसके अलावा इनसे बोइंग वालों से 171 एयरक्राफ्ट लिए थे जो कि वर्ल्ड वाइड जो थे वो भी इनके चलते थे। ये सारे का सारा उन्होंने कहा जी जब तक ये खराबियां इसके अंदर से ठीक नहीं की जाएंगी, ये हम जो है इसके अंदर बिल्कुल पैसेंजर्स की सेफ्टी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, ये वापस आ गए ये लोग लेकर, क्योंकि अगर ऊपर बहुत ज्यादा चले जाते तो बेतहाशा नुकसान होता, सीटें उड़ उड़ के जाती।
या ये कि ओवर द वाटर होते तो
हाँ बहुत मुश्किल आ जाती, सीटें सारी उड़ना शुरू हो जाती, इतना प्रेशर होता है वहां पे जो है ऊपर। तो उसकी वजह से जनाब आज बोइंग के जो शेयर्स हैं वो 9% से नीचे आए हैं, अलास्का एयर के 1% और स्पिरिट एरो सिस्टम्स जो कि इनको कुछ सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं उनके भी 7% से नीचे आए हैं। तो आज लोगों ने फिर से क्वेश्चन उठाया कि भाई इतना ये जो शक्तिशाली किस्म का जो प्लेन है और ये इतनी बड़ी कंपनी है, सारी दुनिया को ये देती फिरती है तैयारे, तो इसके ये सिस्टम है कि दरवाजा ये उड़ गया है एंड मिड एयर है जी, और अभी ये बहुत ज्यादा एलिवेशन पे नहीं था, अभी इसने टेक ऑफ किया ही था वहां से, तो ये इनको जो है वापस लाना पड़ा। अच्छा जनाब, बाइडन साहब जो है वो अपने अब इलेक्शन कैंपेन पे निकले हुए हैं और आज तो खैर वो एक चर्च में थे, वहां पे बल्कि बड़ा उनको जो है प्रो पैलेस्टीनियन जो लोग हैं उन्होंने घेर लिया प्रोटेस्टर्स ने, और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप अपनी वो बताएं, लेकिन वीकेंड के ऊपर जो थे ये मौजूद थे वैली फोर्ज साइट पे, जहां पे कि जॉर्ज वाशिंगटन का रेवोल्यूशनरी वॉर ईरा विंटर हेडक्वार्टर था वो था, उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब जो है उनको बिल्कुल जीतना नहीं चाहिए, और ये जो है इसके अलावा जो इनकी स्पीच थी कम्युनिटी कॉलेज इन ब्लू बेल उसमें भी इन्होंने कहा पेंसिल्वेनिया में कि ट्रंप साहब को बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए क्योंकि ये जो है गलत काम करते हैं, जैसे कि इन्होंने January 6th में के जो अटैक्स थे उनको इनिशिएट किया एंड ही अनलीस्ड हेल, और फिर उसके बाद अपना डर्टी काम जो है दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं, तो अगर ये फिर से जीत के आए तो ये ही इज बैड फॉर डेमोक्रेसी और ये आपकी जो फ्रीडम है उसके ऊपर ये एनक्रोच करेंगे तो आप ना करें। इन्होंने इनका मुकाबला जो है जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे उनके साथ जोड़ा, उन्होंने कहा जी कि ये इतने पावर हंग्री हैं कि ये तो पावर छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, जबकि हमारा जो पहला प्रेसिडेंट था जॉर्ज वाशिंगटन उसको आपको पता ही है कि 2 टर्म्स के बाद जब उसको लगा कि उसकी पॉपुलैरिटी नीचे आ गई है तो वो खुद वॉलंटरली जो है वो छोड़ के चला गया तो वो कहते हैं अगर ये वापस आ गए तो ये जो है रिवेंज लेंगे अपने पॉलिटिकल एनिमीज से, और सोचें कि ये लैंग्वेज किस तरह की यूज करता है, ये जो अपने अपोनेंट्स हैं उनको वर्मीन कहता है, ये लैंग्वेज वो है जो कि नाज़ी जर्मनी में यूज की जाती थी। तो उन्होंने कहा जी हाउ डेयर ही, Who in God's name he thinks he is? तो बड़ा ही आज जो है उन्होंने यानी कि कल जब ये कर रहे थे तो उन्होंने खींचा और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल इनका तरीकाकार जो है वो ठीक नहीं है और इनको आप बिल्कुल वोट ना दें। लेकिन आज जो है बाइडन साहब नू काफी पसूड़ी पई जिस वे लोगों ने पूछे हाँ जी दसो की कर रहे हो पैलेस्टाइन वास्ते, कुछ नहीं हुआ। अच्छा जनाब, अल जजीरा की ये रिपोर्ट है और जैसे कि हम आपको बता ही रहे थे बहुत दिनों से कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब हैं वो मिडिल ईस्ट के दौरे पे निकले हुए हैं, तो कल उनकी मुलाकातें जो थी वो कतर के अंदर हुई थी जहां पे कि उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर हम बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि पैलेस्टीनियंस जो हैं अपने गाजा के अंदर रहें। आज ये पहुंचे हुए थे जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला टू के साथ मिल रहे थे, जहां पे कि किंग अब्दुल्ला टू ने इनको अर्ज किया है कि आप सीज फायर के लिए गाजा के अंदर जो है वो काम करें और ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा शुरू हो गया है इसको खत्म करने की जरूरत है। इनकी मुलाकातें अमान में जो कैपिटल है जॉर्डन का उसमें हो रही थी और इसमें किंग अब्दुल्ला ने इनको बहुत ज्यादा वार्न किया है कि अगर यूएसए ने कुछ ना किया तो इसके बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स जो हैं इस वॉर के आएंगे जो हमास और इसराइल के बीच में चल रही है, और यूएस को अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए इमीडिएट सीज फायर की तरफ और प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस के लिए ताकि वहां पर मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो पहुंच सके। किंग अब्दुल्ला से मुलाकात से पहले ब्लिंकन साहब ने जो जॉर्डन के फॉरन मिनिस्टर थे एमन सफादी उनके साथ भी बात की थी और उनको कहा था कि यूएसए बिल्कुल टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर बिलीव करता है, और आपको पता ही है कि जॉर्डन जो था उसके वैसे क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे इसराइल से, इन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन किया था 1994 में, लेकिन अभी रिसेंटली फिर जो है इन्होंने अपना डिप्लोमैट बुला लिया था और इसराइल का डिप्लोमैट भेज दिया था वापस, और इन्होंने जो है किंग ने रिजेक्ट किया था कि यह पैलेस्टीनियंस को गाजा में से निकाला जाए और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक से, उन्होंने कहा जी कि वो इनका मुल्क है पैलेस्टीनियंस का और उनको वहीं पर रहना चाहिए है। तो ये आज फिर से एक दफा बातचीत हुई है, लेकिन जाहिर है कि अरब वर्ल्ड जो है उसके अंदर काफी गुस्सा है अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका क्योंकि बार बार कहता तो है कि हम हां जी बिल्कुल टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर हम बिलीव करते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम चीजों को सेटल करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली जो है इसराइल को वेपन्स जो है वो भी देता जा रहा है, तो लोगों को समझ नहीं आ रही है कि भाई अब आप क्या चाहते हैं, पीस चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो फिर वेपन्स क्यों इसराइल को दे रहे हैं, क्योंकि उससे वॉर के अंदर बहुत ज्यादा तेजी आती जा रही है। तो बहरहाल जी ये लड़ाइयां जो हैं ये चल रही हैं। आज बेतहाशा एक मैस जो है वो प्रोटेस्ट हुआ है तेल अवीव में, यहां पे जो हॉस्टेज स्क्वायर है उसके ऊपर, जिसमें के लोगों ने बहुत ज्यादा जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उसके खिलाफ नारे लगाए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो 100 के करीब कैप्टिव्स जो कि पकड़े हुए हैं गाजा में, उनको छुड़ाना चाहिए। बल्कि वो कहते हैं कि हम तो चाहते ही नहीं है नेतन्याहू की गवर्नमेंट होए, क्योंकि जब से इसकी गवर्नमेंट आई है तो यहां पर इलाके के अंदर हंगामा शोर मचा हुआ है और वो लड़ाई जो है वो शुरू हुई हुई है। तो उन्होंने कहा जी कि ये आज का जो जलसा था उसमें लोगों को हैरत इसलिए हुई कि इससे पहले जो रिसेंट वीक्स में इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें बस कुछ लोग आते हैं, कोई 100-200, लेकर अब तो हजारों की तादाद में आ जाए। उसके बाद दूसरा जो प्रोटेस्ट था वो जेरूसलम के अंदर हुआ, इजरायली प्रेसिडेंट आइजक हर्ज़ोग जो है उसके घर के बाहर। और यहां पे भी लोगों ने यही कहा कि इस वॉर को इमीडिएटली रोकने की जरूरत है और हमारे जो प्यारे फंसे हुए हैं वहां पे गाजा में उनको वापस लाने की जरूरत है। और वो कॉन्स्टेंटली कहते रहे बुशा 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 बुशा, मीन्स शेम ऑन यू शेम ऑन यू शेम ऑन यू, ऐसे करके बोलते रहे। तो अब क्या होएगा, नेतन्याहू साहब मानेंगे नहीं मानेंगे तो पता चलेगा थोड़े दिनों में। बांग्लादेश में हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि वहां पे भी इलेक्शंस होने वाले हैं और ऑपोजिशन ने तो बिल्कुल पूरी तरह से इसको नकारा था, यानी कि बिल्कुल उन्होंने कहा था हम तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन उसके होते हुए यहां पर जो है काफी हंगामा आराई हुई और 4 जो बूथ थे उनको आग लगाई गई यहां पर बांग्लादेश के अंदर, और इलेक्शन से के मौके पे संडे में। और उसके अलावा जो है एक जो ट्रेन है उसको भी आग लगाई गई जिसके के अंदर 4 लोगों की डेथ हुई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसने 48 आवर का जनरल स्ट्राइक जो है वो शुरू किया था और उसने लोगों को कहा था कि आप बायकॉट करें ये प्राइम मिनिस्टर जो इनकम्बेंट हैं शेख हसीना उनके खिलाफ, और क्योंकि उनके अंडर जो है फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है कि ये ना सिर्फ ये ट्रेन को आग लगाई गई और पोलिंग बूथ्स को, बल्कि 5 प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उनको भी आग लगाई गई है। इसके अलावा जो फायर्स हैं वो रिपोर्ट की गई हैं गाजीपुर के एरियाज में भी, जो कि कैपिटल इनका ढाका जो है उससे बाहर है। लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की जो रूलिंग अवामी लीग है उसने 229 सीट जो पार्लियामेंट है उसमें से 216 सीट्स जो हैं उसके ऊपर इन्होंने कामयाबी हासिल की है, और ये 4th कंसेक्यूटिव टर्म है जिसके के लिए हसीना गवर्नमेंट जो है वो वापस आएगी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने 52 सीट्स जो हैं वो जीती हैं। इसके अलावा जतिया पार्टी जो कि 3rd लार्जेस्ट पार्टी है कंट्री के अंदर, उसने 11 सीट्स जीती हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो काफी स्लो तरीके से रिजल्ट्स बता रहा था बहुत ही हौले हौले, लेकिन फिर जिस वक्त उन्होंने आने शुरू हुए रिजल्ट्स तो अभी तक के ये हैं। और आफ्टरनून में ये सारी पोलिंग जो थी वो क्लोज हुई थी। टर्नओवर जो है इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक बहुत ही लो रहा, सिर्फ 40% लोग जो थे वो वोटिंग के लिए आए। और बांग्लादेश के अंदर आपको पता है 170 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो उसके 40% आप खुद ही सोचेंगे बहुत ही कम लोग थे। 2018 में मीडिया कहता है कि इससे डबल नंबर था, यानी कि 80% के करीब 79.8% के करीब लोग जो थे उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया था। एंड जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, और इसमें 1400 लोगों को आप बुला सकते हैं, और इसके अंदर जो है बड़ा जबरदस्त 32 रूम ये लग्जरी होटल है, और इसके अंदर आप अपने फैमिली के या बिजनेस के इवेंट्स कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त इंडियन पाकिस्तानी वेस्ट इंडीज कुजीन आपको यहां पे मिल सकता है, जबरदस्त साउंड सिस्टम है। और इनका नंबर जो है ये है 6479653823, और मिसेस आगा में है तो बड़े आइडली जो है ये लोकेटेड है। आज से जनाब हम एक एडवर्टाइज कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग शो सीबीसी का है बॉलीवुड, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं आप जरूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उस सिख फैमिली की जो कि यहां पे आए और इस वक्त जो है बड़े जबरदस्त किस्म के वो कपड़े बनाते हैं और जितनी भी जो नई हैं ब्राइड्स उनके लिए वो बनाते हैं कपड़े, और वो कहते हैं जी कि हम बड़ी हॉलीवुड की ड्रीम्स जो हैं वो यहाँ पे सेल करते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या हॉलीवुड ड्रीम्स ये सेल करते हैं तो ये सीबीसी पे बड़ा जबरदस्त शो आता है संडे के संडे, तो आप जरूर इसको देखें और एंजॉय का मजा लें। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने आज फिर से एक दफा कहा है कि लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन जो है हम नहीं कर सकते हैं किसी की भी अंडर आर्टिकल 62(1)(f) और उन्होंने ओवर रूल किया है, जो बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट ये दिया था समीउल्लाह बलोच केस के अंदर, के डिसक्वालिफिकेशन की जाए लाइफ टाइम, ताकि वो लोग जो कि गलत तरीकों के अंदर और रॉन्ग प्रैक्टिसेस में शामिल हैं उनको कभी भी फिर उसके बाद ना लड़ने दिया जाए। 7 मेंबर लार्जर बेंच जो है, विच वॉज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, उसमें थे जस्टिस सैयद मंसूर, याया अफरीदी, अमीन उल खान, जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मजहर और मुसर्रत हिलाली। और ये प्रोसीडिंग्स जो थी सुप्रीम कोर्ट की, ये लाइव चल रही थी उनकी वेबसाइट के ऊपर। इसके अंदर वर्डिक्ट जो है 6-1 से आया है। सिर्फ जस्टिस याया अफरीदी ने इसके साथ डिसएग्री किया, उन्होंने कहा नहीं, जिन्होंने के लूटा है उनको बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बड़ा इसको वेलकम किया है। पीएमएलएन की जो मरियम औरंगजेब है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल राइट स्टेप है टू रिस्टोर कॉन्स्टिट्यूशनल सैनिटी, और यह हिस्ट्री ने बता दिया है कि नवाज शरीफ साहब जो थे बिल्कुल सही थे और उनकी ऑनर जो है वो रिस्टोर की गई है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार जो थे, उनकी बड़ी वेंजफुल पॉलिसी थी और ये बड़ी ये जो डिसऑनरेबली उनकी ये सारे का सारा एक्ट जो है डिस्कार्ड कर दिया गया है। इससे काम है पाकिस्तान पार्टी के प्रेसिडेंट अबुल कलीम खान ने भी इसको बड़ा वेलकम किया इस मूव को। पीपीपी के कमर जमान कायरा ने इसको गुड स्टेप कहा है और उन्होंने कहा कि अच्छा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है वो रिकॉर्ड करेक्ट किया। लेकिन पीटीआई के हमाद अजहर साहब जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो उन्होंने बड़ा एतराज किया। उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों के ऊपर झूठे केस बनाए हुए और एलिगेशन लगाए हैं उनको तो आप इलेक्शन लड़ने से मना कर रहे हैं, और जो आपके लाडले हैं जो कि कन्विक्टेड हैं और जो कि फेस करते थे डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनको आपने जो है क्लीन चिट दे दी है टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, सो इट इज नॉट फेयर, और ये जो है कोई खास लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। तो इसके ऊपर आज बड़ा गुस्से का इजहार किया है। फ्राइडे को आपको याद है कि हमने आपको बताया था कि अमेरिका जो है एक लिस्ट लेकर आया है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट की, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया है विद अलॉन्ग विद अदर्स। मुमताज जहरा बलोच जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में पाकिस्तान में, उन्होंने स्ट्रांगली रिएक्ट किया है कि पाकिस्तान को डेजिग्नेट किया गया है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा जी कि ये जो उनकी असेसमेंट है ये बायस्ड है, आर्बिट्रेरी है और हम इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा जी हमें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है कि आप पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान एक प्लूरलिस्टिक कंट्री है, इसमें बड़ा रिच ट्रेडिशन ऑफ इंटरफेथ फहामनी है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के हक को और उनकी फ्रीडम्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। तो जो आपने ये किया ये ठीक नहीं किया, और हमें बड़ी हैरत हुई है कि इंडिया जो कि ये ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा और सीरियल वायलेटर है, इसको आपने इस लिस्ट में से निकाला है डिस्पाइट यूएस ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी रिकमेंडेशंस जो थी, उसने कहा था कि यहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं इंडिया के अंदर। तो उसका कॉन्स्पिक्यूस ओमिशन यानी कि बहुत ही नोटेबल तरीके से जो आपने उसको निकाला है, उसने बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस रेज किए हैं द क्रेडिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एंटायर प्रोसेस जिसके के अंदर आपने कुछ कंट्रीज को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर डाला है। पाकिस्तान के अंदर बीबी सरदारी जो है जी, उन्होंने कहा जी चाहे जो मर्जी हो जाए 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे। जर्नलिस्टों के साथ आज ये बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और इन्होंने कहा जी कि चाहे रेजोल्यूशन सेनेट के बजाय यूनाइटेड नेशंस में भी पास हो जाए तो भी 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, और उन्होंने नेशन को कहा कि आप लोग जो हैं वो आप बिल्कुल तैयार रहें। उन्होंने कहा यह कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ चंद सेनेटर्स जो हैं उनके कहने पे उनको इतना बड़ा वेट दिया जा रहा है देन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने कहा है कि भाई इलेक्शंस अब होने चाहिए। और उन्होंने होप किया कि पीपल्स पार्टी जो है कराची और हैदराबाद के अंदर स्वीप करेगी, और उन्होंने कहा कि हम आते सारी इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को खत्म करेंगे। और उन्होंने कहा जी कि जो मैं ये भी होप करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो हम लेकर आए हैं प्रेसिडेंट रेफरेंस इन द डेथ सेंटेंस ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो, उसको भी जो है जस्टिस दी जाएगी। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक मौका है कि वो हिस्ट्री को दुरुस्त कर सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स जो है अगर उनको एडमिट कर लें तमाम स्टेक होल्डर्स तो अच्छी बात है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम होप करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो जस्टिस की बुनियाद के ऊपर ये सारा फैसला जो है अपना सुनाएगी। आईएसपीआर की आज एक प्रेस रिलीज आई है जी, और इसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आज बहरीन में पहुंचे हुए हैं और वहां पे उनकी मुलाकातें सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ हुई है। दो दिन के दौरे पे वहां पे हैं और वो बायलैटरल मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे। इनकी मुलाकातें जो हैं बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा, क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद अल खलीफा, कमांडर ऑफ नेशनलिस्ट गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा, इन सब के साथ मुलाकातें की। बहरीन ने पाकिस्तान की जो आर्मी की जो अचीवमेंट्स हैं अगेंस्ट टेररिज्म उसकी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा जी कि हम दोनों मुल्क कोशिश करते रहेंगे रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के, वो 27th राइजिंग डे ऑफ बहरीन नेशनल गार्ड जो है उसके चीफ गेस्ट भी थे। इनको उससे पहले बड़ा वार्मली वेलकम किया गया था और इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। तो ये जो हैं जनाब वहां पे हैं। अब पाएं जड़े ने फिरदे पे इनकी कर सकता है बंदा, क्योंकि मुल्क दे विच जड़े हैं पॉलिटिशियन होते लड़ाई मार कुटाई विच ने। अच्छा जनाब, एक अपेलेंट जो ट्रिब्यूनल है उसने रिजेक्ट किया है चौधरी परवेज इलाही और उनकी बीवी कैसरा इलाही की जो अपील उन्होंने की थी कि भाई उनके जो पेपर्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, नॉमिनेशन पेपर्स। और ये रिजेक्ट किए थे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे फॉर, इन्होंने जो पेपर्स अपने डाले थे फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसीज NA-59 एंड PP-23। और ये जो आज इनकी हियरिंग वो सुन रहे थे तो उसके ऊपर जब इन्होंने सुना तो उन्होंने अपहोल्ड किया आरओ का डिसीजन, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि जब उसने पेपर स्क्रूटनाइज किए थे तो उसके अंदर बहुत सारे एतराज आए थे, उसके अंदर आपने एसेट्स अपने कंसील किए हैं, आपने अपने शेयर्स जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए हैं डिफरेंट कंपनीज में, और कैसरा साहिबा जो है उनके जो फॉरेन ट्रिप्स हैं नॉन कंप्लायंस विद रूल टू ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितना आपका एक्सपेंडिचर है, ये सब चीजें नहीं थी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे वो ओथ कमिश्नर से वेरीफाइड नहीं थे, टेक्निकल मिस्टेक्स थी। तो इन सब चीजों के ऊपर जो है उन्होंने फिर जो अपेलेंट कोर्ट है अपेलेंट जो ट्रिब्यूनल है उसने कहा है जी कि हम रिजेक्ट करते हैं इनकी ये दरखास्त, लेकिन जाहिर है कि ये इसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब लेके जाएंगे या नहीं उसका पता चलेगा। पीटीआई जो है इन द नेक्स्ट 24 और 48 आवर्स अपने तमाम के तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम रिवील कर सकती है। आज इस चीज की बात सेनेटर अली जफर जो है उन्होंने मीडिया को बोलते हुए कही। उन्होंने कहा जी कि पार्टी के तकरीबन 98 से 99% एस्पिरेंट्स जो हैं वो कन्फर्म किए जा सके हैं, बाकी जो 2% हैं उन सीट्स को भी उनके ऊपर भी फाइनलाइज किया जा रहा है कि कौन कंटेस्ट करेगा। और वो कहते हैं जी कि हम जो हैं आज या कल में ये सारी अनाउंसमेंट्स आपके सामने लेकर आ जाएंगे। हम अभी भी पिशावर हाईकोर्ट जो है उसका वर्डिक्ट उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं जी ज्यादातर जो टिकट्स हैं वो लॉयर्स को दिए गए हैं, लेकिन ये इतनी भी बड़ी रेशो नहीं है, कुछ पार्टी वर्कर्स जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और जो है वो उन्होंने कहा जी कि हम वेट कर रहे हैं कि हमें बल्ले का निशान कब मिलेगा। इसके बीच में जो PMLN है उसको बड़ी मुश्किल आ रही हैं, क्योंकि वो जो PTI के डिसिडेंट्स जो हैं जो कि आके PMLN से जिन्होंने हाथ मिला हैं, जैसे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है जहांगीर तरीन की उसने, और PMLQ जो है पंजाब में, तो अब PMLN कह रहा है कि अब इनके साथ सीट एडजस्टमेंट जो है पंजाब में कैसे की जाए, क्योंकि जाहिर है वो सारी सीटों पे खुद हुकूमत करना चाहते हैं। ECP के जो यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं डॉक्टर सैयद आरिफ हुसैन, उन्होंने रिजेक्ट की है PTI की यह एलिगेशन के जिसके अंदर उनको उन्होंने कहा था कि जी हमको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आज ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं February 8 के, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, जो ये सारी की सारी जो थी पिटीशन ये PTI वाले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कायज फायज ईसा साहब उनके पास लेकर आए थे, और उन्होंने कहा था जी कि सिकंदर राजा साहब जो कि ECP के जो हैं वो कमिश्नर हैं वो ये चीजें जो हैं उनको सही से नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने नाम लिया था ECP के सेक्रेटरी, IGP, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ 4 प्रोविंसेस, इंटीरियर सेक्रेटरी, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का काजी साहब आपका जो ऑर्डर है ये जो आपने पास किया था December 22, 2023 को, इसको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। ECP के स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं आज वो आए और उन्होंने बताया कि जी हमने इनके साथ मुलाकातें की थी, हमने इनके ग्रीवेंसेस सुने थे और हमने उनको एड्रेस करने की कोशिश की है, और हमने ये तमाम की तमाम जो इनके कंसर्न थे वो इंटीरियर सेक्रेटरीज, آئی جی پیز جو چیف سیکرٹری سے چاروں پروونسز کے ان کو بتایا تھا. اس کے علاوہ ڈی آر اوز یعنی کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز سب کو ہم نے کہا تھا. 843 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز نیشنل اسمبلی کے لیے ڈالے تھے, جس میں سے کہ 598 کو ایکسپٹ کیا گیا ہے, 245 کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 1777 پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز پروونشل اسمبلی کی سیٹس کے لیے ڈالے ہیں, جس میں سے کہ 1398 ہم نے ایکسپٹ کیے ہیں, 379 ہم نے ریجیکٹ کیے ہیں. تو اس لیے ایکسپٹنس کی جو ریشو ہے ای سی پی کی پی ٹی آئی کے لیے وہ 76.18% ہے. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں دے رہے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ, تو یہ ان کا جو ہے بات بالکل غلط ہے. ہندوستان کے اندر آج ایک دفعہ سے پھر بہت ہی سپریم کورٹ نے اتہاسک قسم کا جو ہے فیصلہ دیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ایک ججمنٹ آئی تھی بلقیس بانو کے کیس میں, جس میں کہ 11 کانوکٹس جن کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے گینگ ریپ کیا اور میری جو فیملی کو مارا تھا ان کو چھوڑ دیا گیا تھا, ان کو واپس آج جو ہے سپریم کورٹ نے جیل میں بھیجا ہے. انہوں نے جو یہ کانوکٹس تھے انہوں نے کہا جی کہ ہماری لبرٹی کو آپ نہیں لے سکتے ہیں, آپ ہمیں بے شک اگر سزا دینا چاہتے ہیں لیکن ہم کو باہر فری رہنے دیں, جس پہ کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو فری رہنے نہیں دیا جا سکتا ہے. اور کورٹ نے جو یہ فیصلہ کیا تھا پہلے یہ بالکل غلط تھا اور اگینسٹ دا لا تھا. بلقیس بانو جو ہے اس کو جس وقت وہ صرف 19 سال کی تھی اور 5 منتھ پریگننٹ تھی تو اس کو گینگ ریپ کیا گیا تھا, اور اس کے 14 فیملی کے ممبرز جو ہیں انکلوڈنگ اس کی بیٹی صالحہ جس کی کہ 3 سال کی عمر تھی, اس کو جو گجرات کے جو رادھیک پور جو ولیج تھا اس کے اندر جب موب نے اٹیک کیا تو انہوں نے ان کو مار دیا تھا. یہ گودرا رائٹس جو تھے بڑے مشہور گجرات کے مارچ 2002 میں جو ہوئے تھے اس کے بیچ میں. اس کے اوپر پھر جو بلقیس بانو ہے اس نے پھر یہ ساری جو تھی پٹیشن ڈالی تھی, لیکن اس کے اندر جو گجرات گورنمنٹ تھی اس نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ریمیشن آف لائف امپریزنمنٹ دینا چاہیے ان 11 جو کانوکٹس ہیں ان کو, اور جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا, جس کے اوپر ظاہر ہے کہ جو بلقیس بانو اور اس کی فیملی جو تھی وہ بڑی دکھی تھی. آج جسٹس بی وی ناگرتنا جو ہیں انہوں نے اسکواش کیا ہے یعنی کہ رد کی ہے گجرات گورنمنٹ کا یہ ڈیسیجن, اور انہوں نے کہا جی کہ گجرات گورنمنٹ کا جورسڈکشن نہیں بنتا ہے کہ وہ ان کو پری میچورلی ریلیز کرے, یہ کورٹ کا کام ہوتا ہے, یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا, سٹیٹ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری لبرٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے, ان کی لبرٹی کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ان ویو آف دا کرائم جو انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ کورٹ اپنے پاورز یوز کرتے ہوئے انڈر آرٹیکل 142 آف کانسٹیٹیوشن, جس کے اندر سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے جسٹس کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے, تو وہ بھی رد کیا سپریم کورٹ نے. انہوں نے کہا کہ یہ ریمیشن ہم نہیں دیں گے اور یہ اگینسٹ لا ہوئے گا اگر ہم نے ان 11 کانوکٹس کو چھوڑ دیا, اینڈ دے شوڈ بی سینٹ بیک ٹو جیل. جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو نہ بھیجا جائے. انہوں نے کہا جی کورٹ بالکل اس بات کو نہیں مانتی ہے کیونکہ رول آف لا جو ہے اٹ مسٹ پریویل. تو اب جو ہے کورٹ نے جناب یہ فیصلہ کیا ہے, تو اس پہ آج جو ہے لوگوں نے آج پھر سے بلکہ اس بانوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں عدالتیں جو ہیں کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اچھی بات ہے. اچھا جناب, یہ ہم آپ کو بتائیں گے اسپیشل رپورٹ اجے بسیریا کی جو کتاب آئی ہے بڑی انٹرسٹنگ, اینگر مینجمنٹ ٹربل ڈپلومیٹک ریلیشنز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اس کے اوپر ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم اپنی خبریں ختم کر لیتے ہیں, اینڈ دین رائٹ ایٹ دا اینڈ پلیز جڑے رہیے گا, ہم آپ کو یہ اسپیشل رپورٹ دیں گے. اس میں بہت سارے اجے بسیریا صاحب نے ریولیشنز کیے ہیں, اور وہ ریولیشنز کیا ہیں آپ کو سن کے جو ہے بڑی حیرت ہوئے گی, کیونکہ ہم جو جانتے ہیں وہ کچھ اور اسٹوری ہے اور جو آج اس کتاب کے اندر آئی ہے وہ کچھ اور ہی اسٹوری ہے. اچھا جناب, انڈسٹری انسائیڈرز جو ہیں انہوں نے آج بتایا ہے کہ شاہ رخ خان صاحب جو ہیں اپنی نیکسٹ فلم وشال بھردواج کے ساتھ جو ہیں وہ سائن کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وشال بھردواج کچھ تھرلنگ قسم کی فلمیں اور بڑے ڈفرنٹ اور جو ڈفرنٹ شیڈ کی فلمیں جو ہیں, بڑا ڈفرنٹ سینما جو ہے اس کے اندر یہ بلیو کرتے ہیں, اس کی فلمیں یہ بناتے ہیں. اور شاہ رخ خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے ایز چاکلیٹ ہیرو زیادہ تر آنا پسند کرتے ہیں, لیکن انسائیڈرز کہتے ہیں کہ یہ جو اسکرپٹ ان کو وشال بھردواج نے سنایا وہ ان کو بڑا پسند آیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی فلم کریں اپنے جو کریئر میں آج تک کرتے آئے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک ڈیفرنٹ فلم کی تھی امول پالیکر کی جو آئی تھی پہیلی, اس کے اندر انہوں نے کیا تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی تک دونوں کی طرف سے کوئی کانفرمیشن نہیں آئی ہے, لیکن انڈسٹری انسائیڈرز کا کہنا ہے کہ نیکسٹ ان کی فلم جو ہے شاہ رخ خان کی وشال بھردواج کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور جناب, ویکینڈ کے اوپر یعنی کہ کل سنڈے کو ہوئے گولڈن گلوب ایوارڈز, اور گولڈن گلوب ایوارڈز کے اندر اوپن ہائمر جو تھا उसने कंप्लीटली डोमिनेट किया. इनको 5 उनको अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट मूवी के, और एक्टिंग अवार्ड्स मिले हैं सिलियन मर्फी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को. इसके अलावा जो क्रिस्टोफर नॉलन जो हैं उनको मिला जी पहला अपना गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर. इसके अलावा पुअर थिंग्स जिसमें कि एमा स्टोन थी उसको बेस्ट म्यूजिकल मूवी एंड कॉमेडी के लिए दिया गया. बारबी जिसकी के बड़ी हाइप थी उसको 2 ही अवार्ड्स मिले. एक तो बिली एलिश का जो सॉन्ग था उसमें व्हाट वाज आई मेड फॉर, और एक न्यू जो सिनेमैटिक कैटेगरी जिसमें कि बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट होती है उसके अंदर इनको अवार्ड मिला. तकरीबन 300 एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने इसके लिए वोट किया था. लिली ग्लैडस्टोन जो है उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया फॉर किलर्स ऑफ फ्लावर मून. पॉल सी मैटी को और डाडवीन जो हैं जॉय रोडोल्फ उनको कॉमेडी जो थी ये मूवी द होल्ड ओवर्स उनके लिए इनको अवार्ड्स दिए गए. टीवी कैटेगरीज के जो अंदर सक्सेशन जो था उसको बेस्ट ड्रामे के लिए 4 अवार्ड्स मिले. द बेयर जो है उसको बेस्ट टीवी कॉमेडी के लिए अवार्ड मिला. एक्टिंग अवार्ड्स मिले जेरमी एलन वाइट और एवो एडबरी को. बीफ जो थी उसको लिमिटेड सीरीज के लिए जो है एक अवार्ड दिया गया. ये जो बड़ी हाई प्रोफाइल ये जो इवेंट था ये बेवरली हिल्टन के अंदर हुआ था, और इसके बाद जो है अब लोगों को ऑस्कर्स का इंतजार है जो कि मार्च 10 को होंगे. एंड्रयू टेट जो है जी आपको पता ही है कि फॉर्मर किक बॉक्सिंग चैंपियन है, बड़े सोशल मीडिया आइकॉन है, बिल्कुल हाउस होल्ड नेम है, और अपने बड़े कंट्रोवर्शियल स्टाइल और एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. इनके ऊपर एक फिल्म आ रही है, और इनको आपको पता ही है कि बड़ा ज्यादा कुछ अलेज सेक्सुअल जो और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेप और इस तरह के जो केसेस थे उनके लिए इनको और इनके भाई ट्रिस्टन को पकड़ा गया था 2022 में. बड़े सीरियस एलिगेशंस इनके ऊपर आए थे, और इनको बंद भी किया था इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जब इन्होंने कुछ बातें की थी जिसको के कहा था कि दिस कम्स अंडर हेट स्पीच. तो काफी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी रही है. इनके ऊपर अब एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है जिसका नाम है आई एम एंड्रयू टेट, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो जल्द ही बताई जाएंगी. लेकिन जब से इसकी इंफॉर्मेशन आई है सोशल मीडिया पे तो लोग जो हैं वो बड़ी बेसब्री से अब इंतजार कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री कब रिलीज की जाएगी. पाकिस्तान की कश्माला तलत जो है जी प्रोफेशनल शूटर जो है उन्होंने अब क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, और इन्होंने इससे पहले जो है ब्रोंज जीता था एशियन गेम्स के अंदर ड्यूरिंग एशियन शूटिंग चैंपियनशिप फॉर वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इन जकार्ता. और अब जो ये मुकाबले हो रहे थे इसमें इनिशियल राउंड में इनके 575 पॉइंट्स थे, तो इन्होंने क्वालिफाई किया था फाइनल्स के लिए, और इन्होंने कम्पीट किया था इंडिया की ईशा सिंह के साथ फॉर गोल्ड. लेकिन ईशा ने जीता गोल्ड और इन्होंने जीता फिर सिल्वर मेडल. तो इनकी परफॉर्मेंस की वजह से इनको अब इन्होंने क्वालिफाई किया है पैरिस ओलंपिक्स के लिए. पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान जो हैं विकेट कीपर बैट्समैन उनको अब पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसका वाइस कैप्टन बनाया गया है. पीसीबी ने आज ये अनाउंसमेंट अपने एक्स के ऊपर की है. इन्होंने रिप्लेस किया है शादाब खान को, और T20 टीम के जो कैप्टन है वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, तो उनके साथ ये खेलेंगे. अभी रिसेंटली शाहीन अफरीदी साहब जो थे वो बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ जर्नलिस्टों से, और हालांकि आपको पता ही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं शाहिद अफरीदी के दामाद हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेफर किया था मोहम्मद रिजवान को शाहीन शाह अफरीदी पर. उन्होंने कहा था कि T20 का कैप्टन मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए, तो लोगों को बड़ी हैरत भी हुई थी. लेकिन बहरहाल जी अब ये वाइस कैप्टन हैं. एक वायरल वीडियो सामने आई है बांग्लादेश के क्रिकेट कैप्टन शकीब उल हसन के बारे में. हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि वो जो इलेक्शंस आने वाले हैं संडे को उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अब देखा गया है कि ये फौरन जैसे ये जीते हैं, ये जीत गए हैं ये जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें, उसके फौरन ही बाद देखा गया इंटरनेट पर कि एक फैन को इन्होंने चाटा मारा है. अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये वीडियो जो है ये पहले की है या ये इलेक्शन से पहले की है, किसी और वाकये की है, ये कब की है ये वीडियो. लेकिन ये वीडियो भी सरफेस पे हुई है, तो लोग जो हैं वो बड़े उनको गुस्सा रहे हैं इनके ऊपर कि एक तो हमने इनको जताया भी और ये फैंस के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं. आपको पता ही है कि शकीब उल हसन बहुत ही ज्यादा गर्म मिजाज के बंदे हैं. ये अक्सर एम्पायर्स के साथ ऑन फील्ड भी आर्ग्यू बड़ा एंग्रीली करते हुए देखे जाते हैं, और एक दफा तो उन्होंने स्टंप्स को ही ठुड्डा मार दिया था जब डिसीजन इनके फेवर में नहीं आया था. अभी रिसेंटली एशिया कप 2023 जो जा रहा था उसके अंदर तो लोगों ने बहुत ही इनको कंडेम किया था जब श्रीलंकन कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज को इन्होंने टाइम आउट करवाया था, विच हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, जब वो अपना जो है वो जो पहन कर आए थे हेलमेट उसको चेंज करना चाहते थे, और अभी वैसे 5 सेकंड थे लेकिन ये चले गए जी उनके पास एम्पायर के पास और उन्होंने इनको टाइम आउट कराया। और एंजेलो मैथ्यूज जो थे उन्होंने और बाकी लोगों ने भी कहा कि उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है नहीं दिखाई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो है जी उस्मान ख्वाजा साहब, उनके अगेंस्ट जो है अब आईसीसी ने फैसला दिया है। आपको पता ही है कि पहले ये जूते पहनना चाहते थे जिसमें ये कहते थे फ्रीडम इज यू नो फॉर एवरीबडी, उसके बाद जब इनको नहीं पहनने दिया गया तो ये काली पट्टी पहन कर आए थे पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट था। आईसीसी के स्पोक्स पर्सन ने आज उनको कहा जी कि इन्होंने ब्रीच किया है क्लॉज एफ ऑफ क्लोदिंग एंड इक्विपमेंट रेगुलेशन ऑफ आईसीसी, और ये सारी की सारी चीज जो है आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस पेज जो है उसके अंदर लिखी हुई है। एंड उन्होंने और फाइनल और ज्यादा डिटेल्स देते हुए कहा कि ये सारा कुछ आउटलाइन किया गया है अपेंडिक्स 2 ऑफ आईसीसी रूल्स के अंदर, और इन्होंने अपना पर्सनल मैसेज जो है वो फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान जो है उसमें देने की कोशिश की, और बगैर द अप्रूवल ऑफ विदाउट द अप्रूवल ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड आईसीसी जिनसे के आपको इजाजत लेनी पड़ती है। तो ये चूंकि इनकी पहली गलती थी इसलिए इस ब्रीच के लिए इनको सिर्फ रेप्रमांड किया जाएगा, लेकिन अगर इन्होंने ये ऑफेंसेज दोहराए तो ज्यादा सख्त जो है फैसला भी इनके खिलाफ लिया जा सकता है। एंड जनाब लास्ट न्यूज बिफोर वी गो टू द स्पेशल रिपोर्ट, स्पेनिश टेनिस स्टार जो है राफेल नडाल, 37 इयर्स उनकी एज है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से अब वो बाहर आ गए हैं। हालांकि वो अभी आए ही थे स्पोर्ट्स में वापस एक साल के बाद। वो कहते हैं जी कि मुझे मसल टियर हो गया है ड्यूरिंग थर्ड सेट जो इनका जो चल रहा था उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन टेनिस में, और इनको जो है काफी डिफीट का सामना था। ये जो प्लेयर हैं जॉर्डन थॉमसन, ब्रिस्बेन में ये जो मैच चल रहा था उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि मैं अब ये जो है 5 सेट का जो मैच होता है ये मैं कम्पीट नहीं कर सकता, अब जो नेक्स्ट मैच मेलबर्न में होना है उसमें मैं नहीं खेल सकूंगा। और उन्होंने कहा जी कि आई एम फ्लाइंग बैक टू स्पेन टू सी माई डॉक्टर, गेट ट्रीटमेंट एंड टेक सम रेस्ट। तो ये है जनाब इस तरह। तो जनाब अब हम आपके साथ करते हैं जी स्पेशल रिपोर्ट, एंड दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। आपको पता ही है कि सुल्तान भाई जो हैं वो बहुत जबरदस्त डील्स लेकर आते हैं, तो अगर आपके घर की क्लोजिंग हो रही है तो आप सुल्तान भाई के साथ संपर्क कर सकते हैं। 801 बोवे ड्राइव वेस्ट पे होते हैं और हर कलर का आपको यहां पे अप्लायंसेस मिलते हैं, तो आप सुल्तान भाई से ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे संपर्क करें। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जनाब ये जो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडिया के हाई कमिश्नर थे अजय बिसेरिया साहब, इनकी ये किताब आ रही है एंगर मैनेजमेंट ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके अंदर वो कहते हैं जी कि 9 इंडियन मिसल्स जो थे उनका रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया था, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी स्पूक कर गई, और उसने फौरन जो है इमरान खान साहब ने अपने एक बड़े ही करीबी दोस्त को मुझे कहा कि फौरन फोन मिलाओ मोदी जी के साथ और मैं उनसे बात करूंगा। तो मैंने उनको कहा जी कि ठीक है मैं उनको कॉल करता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि अगर मोदी जी अलाउड हैं कि सॉरी मोदी जी अवेलेबल हैं कि नहीं है, लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर में उनको बताया कि मोदी जी अवेलेबल नहीं है और वो बात नहीं करना चाहते हैं इमरान खान साहब के साथ। तो फिर मैंने उनको कहा कि या कर नहीं सकते हैं या करना नहीं चाहते हैं बहरहाल। तो वो कहते हैं जी कि फिर मैंने उनको कहा कि अगर इमरान खान साहब के कोई भी कंसर्न्स हैं तो वो मेरे से जो है वो बात कर सकते हैं। आपको पता ही है कि ये सारी चीजें जो थी 2019 में चली थी February 27 में, जिसमें के मोदी जी ने एक दफा अपनी स्पीच में भी बात करते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान हमारी बात ना सुनता तो ये एक कत्ल की रात होती। हुआ क्या था, हुआ ये था कि वन ऑफ द टू इंडियन कैप्टन्स जो एरोप्लेन के जिनको के क्रैश किया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो पकड़े गए थे, जिसमें से के एक विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमन भी थे और पाकिस्तान की कस्टडी में थे, तो उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गई थी। और मिडनाइट के वक्त ये जो है वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर टू इंडिया सोहेल महमूद जो हैं उन्होंने भी अलोंग विद खान साहब के जो दोस्त हैं उन्होंने ये बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि खान साहब जो है मोदी जी के साथ बात करना चाहते हैं। बसेरिया साहब कहते हैं जी कि जब उन्होंने सारी चीजें चेक की तो उन्होंने महमूद साहब को कहा कि ये अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को फौरन जो है अभिनंदन साहब को के बारे में कुछ लेना पड़ेगा डिसीजन। वो कहते हैं जी कि नेक्स्ट डे ही February 28 को इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि पाकिस्तान अभिनंदन को एज अ गुडविल जेस्चर, किसी के बोझ के अंदर दबाव के अंदर नहीं बल्कि एक गुडविल जेस्चर अभिनंदन जो है उनको हम कर रहे हैं, और وہ یہ بھی بتانا چاہتے تھے سارے جو ویسٹرن ڈپلومیٹس تھے ان کو کہ بھئی یہ ہمارا ایک جو ہے وہ جیسچر ہے ٹوورڈز انڈیا کے ہم ان کے ساتھ دوستی بنانا چاہتے ہیں. ویسٹرن ڈپلومیٹس جو ہیں انکلوڈنگ یو ایس اور یو کے, بسیریا صاحب کی کتاب یہ کہتی ہے کہ جو یہ سارے انوائز جو کہ انڈیا اور پاکستان میں اس وقت تھے انہوں نے خان صاحب کی گورنمنٹ کو بہت ہی کلیئرلی بتا دیا تھا کہ انڈیا کا یہ جو تھریٹ ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ بالکل سچا ہو سکتا ہے اگر ان کے پائلٹ کو آپ نے نقصان پہنچایا, جس کے اوپر پاکستان جو تھا وہ بہت زیادہ گھبرا گیا. یہ اجے بسیریا صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان واز سپوکڈ, تو وہ بہت گھبرا گئے تھے اور وہ کہتے ہیں جی کہ تین دفعہ پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے کوئی میٹنگز کی اپنے جتنے بھی ٹاپ جو ڈپلومیٹس تھے اور ہندوستان کو یہاں تک کہنے کی کوشش کی جس کو کہ وہ پہلے پاکستان ماننے کو تیار نہیں تھا کہ پلوامہ میں بھی جو آپ نے ڈوزیئر ہم کو دیا ہے یا کہ یہ جو ایشو آف ٹیرورزم ہے اس کے اوپر ہم کام کرنے کو تیار ہیں. بسیریا صاحب کہتے ہیں جی اپنی کتاب میں کہ یو ایس اور یو کے انوائز جو تھے انہوں نے ویسے کہا تھا اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئے تھے آصف منیر صاحب جو کہ اب سی او اے ایس ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ فالس فلیگز ہوئیں, اور لیکن جو فورن سیکرٹری تیمینہ جنجوا تھیں وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ یہ تو ہم یہ تو بالکل ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور ہو ہی نہیں رہا اور ہم نے جو ہے وہ کچھ ایسا غلط کیا نہیں ہے اور کیسے ہندوستان وہ کرے گا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ شاید لگ رہا تھا پاکستان کو کہ ابھی بھی یہ ڈینائل کے اندر ہیں, جیسے کہ پاکستان انہوں نے بڑی ایکوزیشنز کی ہیں بسیریا صاحب نے پاکستان کے لیے, انہوں نے کہا جی کہ جیسے ہمیشہ ہی پاکستان 9/11 ممبئی پٹھان کوٹ یوری کے بعد بھی جو ہے ڈینائل میں رہتا ہے اور کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے, تو ان کو لگا کہ شاید یہ بھی پاکستان کا جھوٹ ہے. جب ویسٹرن پھر جو تھے انوائز انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس چیز کو سیریس لینا چاہیے, لیکن کیا یہ سچ تھا کہ نہیں تھا, لیکن جو انڈیا کی یہ کورسیو پالیسی ڈپلومیسی تھی وہ بہت ہی افیکٹو رہی ہے اجے بسیریا صاحب کا کہنا ہے اپنی کتاب میں. اور انہوں نے کہا جی کہ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک بریف ہینڈ شیک کروانے کی کوشش کی مودی جی اور عمران خان صاحب کی بشک کے اندر آن دا مارجنز آف ایس سی او میٹنگ, تاکہ خان صاحب ڈائریکٹلی مودی جی کو بتا سکیں کہ بھئی ہم سنسیئر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو ہے وہ مودی جی شاید ابھی اس موڈ میں نہیں تھے کہ پاکستان کے ساتھ بات کی جائے. بسیریا صاحب کہتے ہیں جی کہ جو ایک ہمارے پاس جو ایک انفارمیشن آئی تھی جس کا ذکر انہوں نے اب اپنی کتاب میں کیا, وہ کہتے ہیں جی February 27 کو جو مس جنجوا تھیں انہوں نے یو ایس یو کے اور فرینچ انوائز جو تھے ان کو بلایا, اینڈ رائٹ ان دا مڈل آف دا ڈسکشن ان کے ساتھ جب پڑھ رہی تھیں بات کر رہی تھیں تو ایک میسج ان کو آیا جو انہوں نے ان کو پڑھ کے سنایا, اور انہوں نے کہا جی کہ ہندوستان نے اپنی 9 missiles جو ہیں وہ پاکستان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور یہ چیزوں کو بہت زیادہ خراب کریں گی, یہ ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے, یہ آپ اپنے ملکوں میں بتائیں, کیونکہ اس کی وجہ سے یہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں بہت زیادہ ایسکلیٹ اور کر جائیں گی. ویسٹرن ڈپلومیٹس جو تھے وہ بسیریا صاحب کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اس چیز نے پاکستان کو ری تھنک اپنی پالیسی کرنے کے اوپر مجبور کیا, اور آرمی چیف قمر باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے پرومس کیا ویسٹرن ڈپلومیٹس کو کہ ہم ان چیزوں کو بالکل بڑھاوا نہیں دینا چاہتے ہیں, بلکہ پلوامہ کا جو ڈوزیئر ہے اس کے اوپر میں خود ساری چیزیں جو ہیں وہ مانیٹر کروں گا. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے اس بات کی پشتی نہیں کی گئی تھی کہ واقعی کیا ہندوستان نے 9 missiles جو ہیں ان کا رخ پاکستان کی طرف کیا تھا, لیکن اس چیز سے پاکستان میں اور اس کی اسٹیبلشمنٹ میں کافی جو ہے انریسٹ آ گیا تھا. اور انہوں نے بسیریا صاحب کہتے ہیں جی کہ اس سے پہلے بھی جو ہے اس طرح کی کچھ ڈپلومیٹک بات چیت چلتی تھی, خان صاحب نے کوشش کی کہ اور زیادہ اس کو دوستی کو آگے بڑھایا جائے, یعنی کہ چھپ چھپ کے وہ تعریف کر رہے ہیں لیکن اتنی کھل کے تعریف بھی نہیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی, کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایس آئی تھی پھر اس نے ایک امیننٹ ایک القاعدہ کا اٹیک ہونے والا تھا ان کا جو آپریٹو تھا ذاکر موسیٰ کے اوپر, اور انہوں نے پھر ہندوستان کو بتایا تھا جو کہ ہندوستان نے لائٹ لیا تھا, کوئی اتنا وہ نہیں لیا, لیکن فائنلی دے فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ جو ٹپ آف دی تھی پاکستان کے آئی ایس آئی نے یہ بالکل ٹھیک تھی کیونکہ اسی وقت میں اسی ٹائم پہ وہ اٹیک جو تھا وہ وہاں پہ آیا تھا. اور انہوں نے بسیریا صاحب نے ذرا تھوڑا سا اعتراض کیا ہے خان صاحب کے اوپر, انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب جو ہیں ان کا بڑا ہی شرل ریٹرک تھا انڈین لیڈرشپ کی طرف, جس کی وجہ سے انڈین لیڈرشپ جو ہے اس نے اپنے ڈپلومیسی کے دروازے جو ہیں پھر پاکستان پہ بند کیے. حالانکہ اب یہ کتنا سچ ہے بہرحال یہ بسیریا صاحب کی کتاب میں ہے, وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کا شاید جو ہے بڑا سخت سر تھا ہندوستان کی لیڈرشپ کے خلاف, لیکن جنرل باجوا جو تھے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب کیے جائیں اور تمام ڈپلومیسی کے ڈورز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں. तो बहरहाल जी उसके बाद तो जो खान साहब के साथ हुआ फिर वो आपने देखा ही, इसीलिए वो जो आजकल हम कह रहे हैं ना पाकिस्तान में एक लाडला आ गया है नवाज शरीफ, वो इसीलिए उसको एस्टैब्लिशमेंट जिताना चाहती है क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता है। आपको पता ही कि मोदी जी और जिंदल वगैरह के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो वो अब चूंकि इंडिया जो है वो बड़ा स्यापे पता है ना कि भाई पाकिस्तान से बड़ा वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और ये है और वो है, तो इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट भी चाहती नहीं है कि खान साहब को वापस लाएं, वो चाहते हैं कि लाडले को वापस ले आए जाए ताकि जरा हिंदुस्तान जो है वो ठंडा रहे और उसके साथ दोस्तियां बने। बहरहाल हम तो कहते हैं भाई नेबर्स के साथ अच्छे रहें, लेकिन अब क्या है, अब ये बुक है जी, अब ये कितनी सच्चाई है इस बुक में, अब वो तो पढ़ के ही आपको आप खुद सोचेंगे क्या है। ठीक है जी, ऐसा है,
ये ही आपकी स्पेशल रिपोर्ट,
ये थी हमारी जी स्पेशल,
ये थी सारी आपकी खबरें
जी, बिल्कुल सारी खबरें थी। मतलब आज
फ्राइडे तो नहीं है,
पायान अजय होर तुसी सुनना है,
आज फ्राइडे तो नहीं है,
नहीं पायान बस बहुत हो गया,
हाँ पूरा पूरा हफ्ता बाकी है भी।
Yes.
कहने का मकसद यह है कि कल इंशाल्लाह ताला फिर हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे, और शादी जी थैंक यू सो मच,
थैंक यू मच भाई, थैंक यू,
और कल फिर अब से लेके कल दोपहर तक जितनी खबरें होंगी तमाम की तमाम आपके लिए पेश की जाएंगी, बाकिया बातें कल। अभी मैं लिए चलता हूँ आपको प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद, जीशान के साथ एंटरटेन रहिए, बाकिया की बातें कल, उस वक्त के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
तेरे कुछ कह गए प्यार की लहरों में दो दिल बह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए, अब रुकना प्रीत किए नाव रे, अब रुकना प्रीत किए नाव रे, नैन हुए बावरे नैन मिले नैन हुए बावरे। अभी न जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं।
निकलेगा कभी चमकेगा कभी प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यास फिर क्यों डरता है दिल